नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। ये दौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई प्रमुख नेताओं के चुनावी भाग्य का फैसला करेगा। 49 सीटों पर होने वाले चुनाव में 82 महिलाओं समेत कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 8 राज्यों की सीटों पर वोटिंग है उनमें झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 और लद्दाख सीट शामिल है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ आज भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने इन चारों की ही पहचान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि चारों ही आतंकी मूल रूप से श्रीलंकाई नागरिक हैं। जल्द ही अन्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी शेयर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चारों आतंकियों के अहमदाबाद आने का इनपुट मिला था। केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात एटीएस के साथ इस इनपुट को शेयर किया था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये सभी आतंकी श्रीलंका के बताए जा रहे हैं। आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां कहां ले गई हैं, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन आतंकियों का अहमदाबाद आने का इरादा क्या था, इस पर भी अभी तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के पास से जो टिकट मिले हैं वो चेन्नई से अहमदाबाद आने के हैं। टिकटों से मिले तार जोड़ने पर यह माना जा रहा है कि ये आतंकी कोलंबो से तमिलनाडु और तमिलनाडु से अहमदाबाद गए थे। सभी को एक खास हैंडलर गाइड कर रहा था। जानकारी के मुताबिक अभी ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर ये आतंकी अहमदाबाद या चेन्नई में किन किन लोगों से मिले थे जो कि देश के लिए खतरा भी हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अहमदाबाद आए ये आतंकी अपने हैंडलर के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन लगातार भारत में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लग सकी है। इसी साल मार्च में असम से सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के आईएसआईएस चीफ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ उसका सहयोगी भी शामिल था। बताया जाता है कि दोनों बांग्लादेश सीमा पार करके भारत में घुसे थे। दिल्ली की विवादित शराब नीति हो या फिर स्वाति मालीवाल केस, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी की विदेशी फंडिंग को लेकर अब ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग की पूरी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी चंदे की रकम हासिल हुई है। अपनी जांच रिपोर्ट में ईडी ने आम आदमी पार्टी पर एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी के नियमों के उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इस जांच रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग देने वालों की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ ही अन्य सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल की आहट का संकेत दे रहे हैं। ईडी ने आपकी विदेशी फंडिंग की जांच करते हुए बताया कि पार्टी तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से पैसा हासिल हुआ है। फंड ट्रांसफर करने के लिए लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है। इस दौरान ईडी ने अपनी जांच में आप और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का उल्लेख किया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग के जरिए जुटाए गए पैसों का व्यक्तिगत लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भी थे और उनकी भी मौत हो गई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार 29 मई को शाम 7 बजे के करीब क्रैश हुआ था। इब्राहिम रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे और वहां से वो लौट रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अब हादसे को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। इसराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी सभी को पता है। हाल ही में ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए थे। इसराइल ने सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराया था और जवाबी हमला भी किया था। इस दौरान इसराइल ने बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था। इसराइल गाजा युद्ध के बाद से ही ईरान और इसराइल के बीच तल्खी बढ़ गई है। ऐसे में चर्चा है कि अगर ये हेलीकॉप्टर हादसा साजिश है तो इसमें इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।